कभी कभी अच्छे अच्छे साधक भी बड़ी गलती कर बैठते हैं। उच्च कोटि के जो साधक हैं वो अपने में दोष देखते हैं कि मुझ में बड़ा लोभ है, मुझ में बड़ा क्रोध है, मुझ में बड़ा काम है, मुझ में बड़ी अशांति है, मुझ में बड़ा ये। भैया अब तुम्हारे में हो तो तुमको दिखता नहीं। श्री राम, आंख में काजल लगाओ, अगर आंख में ठीक से काजल लगा है तो आंख को नहीं दिखेगा, आंख से कुछ दूर होगा तभी आंख को दिखेगा। ऐसे ही तुम अपने में अगर दोष होते हैं तभी तक अपने को दिखते ही नहीं, चाहे फिर गुरु समझाए चाहे पड़ोसी समझाए, लेकिन अपने को नहीं दिखेंगे। अपने में जितने गहरे दोष हैं उतने अपने में नहीं दिखेंगे। जब अपने से थोड़े पृथक होंगे तब लगेगा कि हाँ बेटा मुझे भूल थी, वो बोले बाव इंडियन का वो खबर पाए श्री राम, फिर मानेगा कि ये मेरी गलती थी। जब तक हम उसके साथ तादात्म्य साध लेते हैं, एक हो जाते हैं, तब तक वो दोष हमको दिखते नहीं। जब होते हैं तो दिखते नहीं, और जब दिखते हैं तब होते नहीं। श्री राम, जय 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 जय। जब होते हैं तब दिखते नहीं, और जब दिखते हैं तब होते नहीं। श्री राम, ये बात सूक्ष्म है, कृपा करना इसको जरा अपनी बना लेना। जब अपने में दोष होते हैं तब दिखते नहीं, और जब दिखते हैं तब अपने में नहीं होते। मजे की बात क्या है कि अपने में होते और नहीं दिखते हैं तो आदमी दोष करता जा रहा है, और अपने में नहीं होते और जब दिखते हैं तो दोषी मान के दबा जा रहा है। हाय राम, दोनों बाजू से घाटा। श्री राम, मैं फिर से दोहराता हूं, कृपा करके याद रखना, अपने में दोष होते हैं तभी दिखेंगे नहीं। जैसे आंख में काजल होगा ना तो नहीं दिखेगा, ठीक है ना? आंख में काजल होगा तो दिखेगा, नहीं दिखेगा, और आंख से दूर होगा तब दिखेगा। तो अपने में दोष होंगे तो दिखेंगे नहीं, और जब दिखेंगे तो अपने में नहीं होंगे। दिखने के लिए थोड़ी दूरी चाहिए, थोड़ा अलगाव चाहिए, अलगाव नहीं होगा तो नहीं दिखेंगे। तो जिनको दोष दिखते हैं वो खुशी मनाए कि वाह वाह हमारे में नहीं है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। श्री राम, उसका मतलब ये भी नहीं कि दोषी काम करता रहे और कोई बता के हाँ लेकिन हमारे में नहीं दे धरा धर दे धरा धर दे धमा धम करता रहे। कहने का तात्पर्य है कि ये गुण और दोष होते माया में है, लेकिन हम अपने को नहीं जानते तो माया से इतने मिल जाते हैं कि महाराज हम खो गए। झूले की स्पीड में, आगे और पीछे की स्पीड में, वो मध्य में भी आता है और उसका आधार मध्य ही है, वो हम भूल ही गए। एक बुढ़िया माई थी, लकड़ी टेकती टेकती कथा में पहुंच गई। कथा कोई संत पुरुष थे, अनुभव संपन्न महापुरुष थे, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढानि माया। उस श्लोक पर भगवान सब में है, प्राणी मात्र में ईश्वर है। जो ईश्वर के सिवाय देखेगा उसको राग और द्वेष दिखेगा, मित्र और शत्रु दिखेगा, मान और अपमान दिखेगा, अपना और पराया दिखेगा, और जीवन और मृत्यु दिखेगा, और घटी यंत्र किनाई भटकता ही रहेगा। लेकिन जिसको सब में ईश्वर दिख गया उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। इस प्रकार का अनुभव संपन्न महापुरुष व्याख्या कर रहे थे श्लोक की। बुढ़िया को ये बात गले उतर गई कि सब में परमात्मा है। तो फिर उसका कोई मान होता तो बोले राम जी की इच्छा, अपमान हुआ कि राम जी की इच्छा, सुख आया तो राम जी की इच्छा, दुख आया तो राम जी की इच्छा। उमा दारू योषित किनाई सबई करावत राम गोसाई। मेरे राम की कृपा के बिना क्या हो सकता, पत्ता भी तो नहीं हिल सकता है। तो बुढ़िया को ये पता चल गया, हम पहले सुनते थे कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हमको संदेह रहता था। कथा में संत लोग बोलते बात झूठी नहीं हो सकती, लेकिन पत्ता भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता है, तो कितने पत्ते हैं, कितने वृक्ष हैं, और भगवान घड़ी घड़ी में कहते हो कि हिल ना हिल, हिल ना हिल, तो भगवान का नींद कैसे आती हो? ऐसी शंका हुआ करती थी बचपन में, छोटे थे हम, चड्डी पहनते थे, बुशर्ट पहनते थे, छप्पे छप्पे वाले, तभी की बात। जय जय श्री राम। गुलड़ू थे, मतलब जोगी की उम्र के, 10-12 साल के, तभी की बात। अम्मा सुनाती थी माँ कि भाई कथा में आज सुन के आया कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। वो जो कथा सुन के आती थी, सुनते थे रुचि से, आज सत्संग क्या सुना तो उनका भी पक्का हो जाता था और अपने को भी अच्छा लगता था, रुचि थी। फिर ये सोचते थे, माँ तो कथा सुन के आई और सुना दी, तो कुछ कुछ ऐसी बातें थी वहां चित्त फिर विचार करता, ऐसी गति नहीं थी, ऐसा सत्संग नहीं मिलता था, तो चलो के भाई भगवान की मर्जी है, भगवान की। फिर वो जो शंका का समाधान नहीं होता ना, वो फिर अंदर खटकती है, रास्ता बनाती हो। तो अभी आपके चित्त में भी ऐसा हो सकता है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है, ये शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं। और अगर सोचा जाए कि भगवान इच्छा कर रहे, इच्छा के सिवा एक पत्ता नहीं हिल सकता है, तो सारा दिन इच्छा करते करते तो भगवान तो थक जाएगा। हम चार घड़ी सतत इच्छा करते तो परेशान हो जाते, रात्रि को इच्छाएं दब जाती है तो शांति मिलती है, कथा सुनते सुनते इच्छाएं भूल जाते हैं तो आनंद आता है, कुछ देखते देखते और इच्छाएं हट जाती है तो मजा आता है। तो हमारा स्वभाव तो आनंद है और इच्छाएं परेशान करती है, तो भगवान की इच्छा बिना अगर पता नहीं हिलता होगा तो भगवान कितने परेशान होंगे। श्री राम। इस प्रकार के भाव विचार आते हों। हकीकत में क्या होता है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ये बात भी सच्ची है। और जैसे हम सोच रहे कि भगवान, जैसे हम इच्छा करते ऐसे भगवान इच्छा करते, ये बात नहीं। श्री राम। अब पत्ते हिलते हैं हवा से, हवा रहती है आकाश में, आकाश होता है प्रकृति से, और प्रकृति होती है पुरुष से, तो पुरुष की सत्ता के बिना प्रकृति में सामर्थ्य नहीं, और प्रकृति के सामर्थ्य के बिना आकाश में, और आकाश की सामर्थ्य के बिना वायु में सामर्थ्य नहीं। इसलिए तात्विक ढंग से देखा जाए कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। जय जय। अब मेरी शक्ति के बिना मेरा एक बाल भी नहीं टिक सकता है, मेरी सत्ता देता हूं तभी ये बाल रोम को टिके, लेकिन बार बार थोड़े रोम कूपों को पकड़ के बैठा हूं, ये मेरा स्वभाव है। जैसे मेरा रोम कूप, शरीर के रोम कूप को सत्ता देना मेरा स्वभाव है, मेरी इच्छा के बिना ये नहीं टिक सकते हैं, और ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड का आधार, जैसे तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे रोम कूप का आधार तुम ही हो, तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हारे रोम कूप नहीं टिक सकते हैं, तुम ही इनको सत्ता दे रहे हो, ऐसी कोई क्षण नहीं कि तुम्हारे से तुम्हारे रोम कूप अलग हो जाए। जय जय। और अलग हो गए तो तुम्हारे शरीर पर नहीं टिक पाएंगे। ऐसे जैसे तुम्हारे शरीर पर रोम कूप है, ऐसे सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा में ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड नहीं, जैसे तुम्हारे शरीर में रोम कूप है और तुमको पता ही नहीं कि कितने हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड है। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट जतींद्र जोगी, कई कोट ब्रह्मरस भोगी। ब्रह्मरस भोगने वाले भी करोड़ों लोग हैं, ज्ञानी भी करोड़ों मिल जाएंगे, इस ब्रह्मांड में गिने गिनाए मिलेंगे, लेकिन अनंत ब्रह्मांड है तो फिर ज्ञानी भी अनंत हो जाएंगे। श्री राम। तो जब हम ज्ञान स्वरूप ईश्वर के तरफ नहीं देखते हैं तो गुणों में देखते हैं, अब गुणों में देखेंगे तो विषमता के बिना कुछ नहीं लगेगा। तो अब विषमता को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए कि मान अपमानयो तुल्य, तुल्यो मित्र अरिपक्षयो। मित्र और अरिपक्ष, शत्रु के पक्ष में और मित्र में जो तुल्य है, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि अरिपक्ष और मित्र का पक्ष, अर्जुन मित्र थे, शिष्य थे, और दुर्योधन अरिपक्ष थे। मित्र को थोड़ा कम भी दे देता है आदमी तो चल जाता है, शत्रु के प्रति उदारता होनी चाहिए और मित्र के प्रति न्याय होना चाहिए। जो समझदार माइयां हैं, अपना लड़का लड़ा, अपना लड़का लड़ाई किया, लड़ा और पड़ोसी के बच्चे के साथ, अब जो चतुर माई है तो अपने लड़के के प्रति न्याय करेगी और पड़ोसी के लड़के को उदारता से व्यवहार करेगी, तो पड़ोस की मिठास बनी रहेगी। जय जय। हम लोग क्या करते हैं, जहां अपना होता है वहां पक्ष लेते हैं और पराये को सोचते हैं, उसी लिए मुसीबतें बढ़ जाती है। और तत्व से देखा जाए पराया कोई है ही नहीं, ममता से अपना और पराया दिखता है। तो जो जो संसार में दोष होते हैं वो तटस्थ विचार के अभाव के कारण आदमी कर्मों की जाल गूंथता है और दुखी होता है। बुढ़िया माई ने सुन रखा था कि सब में एक परमात्मा है और व्यक्ति अपने अपने प्रारब्ध, अपने अपने स्वभाव, अपने अपने कर्म से जन्मते हैं, सुखी दुखी होते हैं अपने विचारों से। जिस वक्त सुख के विचार करता है तो आदमी दुख में भी सुखी हो जाता है, और दुख के विचार करता है तो सुख में भी आदमी दुखी हो जाता है। मुक्ति के विचार करता है तो आदमी जेल में भी मुक्ति का आनंद ले सकता है, और बंधन का विचार करता है तो महाराज आदमी सैर करते हुए किश्ती में भी अपने को बंधा हुआ मानता। श्री राम, श्री कृष्ण कैद में है तभी भी मुक्तता का अनुभव हो रहा है। बुद्ध पुरुष ज्ञानवान जेल में भी बैठे रहे, मान लो कोई उनको कोई ऐसे कारण से उन्होंने कराया प्रकृति दोष से उनको सजा भी आ गई और जेल में भी बैठे हैं, तो मुक्त आदमी जेल में भी मुक्त है और बंधन वाला तो हवाई जहाज में भी बंधा हुआ है। श्री राम। तो विचारों में बड़ी शक्ति है, विचार ही दुख और सुख पैदा करते हैं, और विचार से ही आत्मविचार आता है तो आदमी परब्रह्म परमात्मा के साथ एक होने का अनुभव करता है, और अनात्म विचार आता है तो आदमी ऐसी गुत्थियां बना लेता है कि महाराज उसका मुक्त होना बड़ा कठिन सा लग रहा है। आदमी अपने भाग्य का आप विधाता है, जैसा जिस वक्त विचार करता है ऐसा वो हो जाता है। घृणा के, हिंसा के, खिन्नता के विचार करने से ब्लड पर भी वैसे ही प्रभाव पड़ जाता है। मैं बीमार हूं, मैं चिंतित हूं, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मैं अभागा हूं, हाय रे हाय, अबे मारू शू थशे, ऐसे विचार मात्र से उसका दुर्भाग्य चालू हो जाता है। जो हो गया है सब सपना है, जो हो रहा है वो देख रहे, जो होगा वो देखा जाएगा, हम है अपने आप खुदा के बाप, हरि ओम तत्सत, बिजु बधु गप सप। ऐसे विचार आने से तुरंत वो ब्रह्मानंद की मस्ती उससे छलकने लग जाती। ओम 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 ढेजा रे दुश्मन जी दुआ, वणन सजन जू गारियो थियो। जिसको आप सज्जन मानते उसकी गाली भी आपके अंदर में आनंद पैदा कर देती है, और जिसको आप दुश्मन मानते उसकी दुआ भी अंदर में परेशानी पैदा कर देती है। ठीक है कि नहीं? शादी के दिनों में देखो, शेर की, सवा शेर की, डोड़ शेर की मिलती है तभी भी हंसते हैं, मजा देते। अगर गाली में दुख होता तो शादी विवाह में जो होता है ना, गालियां देते ना विनोद, तो वहां दुख होना चाहिए। गाली में दुख नहीं है और धन्यवाद में सुख नहीं है, तुम जिस वक्त जिस ढंग से लेते हो उस ढंग से आपको महसूस होता है, तो आप कितने स्वतंत्र हो। श्री राम। एक सज्जन था, गुरु के पास बैठा था, गुरु से मिलना था, बातचीत करना था, लेकिन गुरु जी ने ध्यान ही नहीं दिया। नया आदमी आया गुरु जी के नजीक, उन बात किया, गुरु जी ने उसको प्रसाद दिया, पुस्तक दे दिया, और फिर वो सज्जन उठा के, साईं हमारे से बात, हमको बात करना है। बोले चले चले, रोज रोज सिर का पता टाइम नहीं है। गया, जो कल आया देरी से आया उनको तो मौका दिया, उनको प्रसाद भी दिया, पुस्तक भी दिया। हम वेले आए, प्रसाद लाए, तो हम प्रसाद रखा तो हमको कुछ नहीं दिया और हमसे बात भी नहीं की। क्या होली चालू कर दी। जय जय। अब वो अशांत। दूसरे दिन दूसरा आदमी आया और वो भी नजीक का था, उसने भी प्रसाद रखा, पूछना था, बात करनी थी, और बाबा जी ने उसका भी तिरस्कार कर दिया और नए आदमी से नम्रता व्यवहार किया। वो गया घर के, देखो मानो ना मानो ये बात पक्की है कि बाबा जी हमको अपना मानते। वो नया था, दूर का था, इसलिए उसको जरा नम्रता व्यवहार देकर, प्रेम देकर उसको भगवान के रास्ते लगाया, और हम तो पक्के थे, लापरवाही किया। देखो हम पक्के हैं, गुरु जी की नजर में तो पक्के ही है। अरे ओ वाह वाह भाई, दे धरा धर। व्यवहार तो ऐसे ही हुआ, लेकिन उसने सुख बना लिया, उसने दुख बना लिया, उसने गुरु से अपनी दूरी बना ली और उसने नजीकी बना ली, और उसको ऐसे ही फल होगा। इसीलिए कृपानाथ आप मुझ पर कृपा करें तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम अपने पर जरूर कृपा करें, उसमें कमी न रखें, घाटा न करें, अपने आप ऊपर जरूर कृपा करें। कि नकारात्मक विचार, दुख पैदा करने वाले विचार, घृणा पैदा करने वाले विचारों को आप हृदय में जगह न दें, ये आपके हाथ की बात है। श्री राम। और झोपड़े की कथा तो तुमने सुनी होगी, आधा झोपड़ा टूट गया और साधु बोलता कि क्या तू है कि नहीं, एक तो नकारात्मक करके उसको फरियाद कर रहा है, ये में होली पैदा कर रहा है, और दूसरा कहता कि तू कितना दयालु है, हमको झोपड़े में आसक्ति हो गई उसीलिए तूने तूफान चालू किया, और तूफान में आधा झोपड़ा तोड़ा फिर तुझे दया आ गई, तू कितना कृपालु है प्रभु। आधे झोपड़े टूटा तो आधे में तो आराम करेंगे और आधे में खुले टिमटिमाते तारों को निहारेंगे, तेरे चमकते हुए चांद को निहार के भीतर के सोहम स्वरूप के चांद को भी प्रकट कर देंगे, तू कितना दयालु है। झोपड़ा तो वही का वही टूटा है और दो साधु हैं, दोनों मेंबर हैं उसी झोपड़े के, पार्टनर हैं, तो एक धन्यवाद देकर अपने चित्त में शांति और आनंद और उल्लास और प्रेम प्रकट कर रहा है, दूसरा फरियाद करके घृणा अशांति दुख दीनता हीनता और अपने को असहाय मान रहा है। झोपड़ा तो वही का वही टूटा है। तो ऐसे ही संसार में भी कईयों के झोपड़े टूटते रहते हैं, केवल मिट्टी ईंट चुनने का झोपड़ा झोपड़ा नहीं, कई कल्पनाओं के झोपड़े भी टूटते रहते हैं। श्री राम। धारियो तू कोई थयो कोई मानियो तू कोई निकड़ियो कोई जवानो तू क्यों थवा कोई बैठा रिक्शा मान चालू फटफट फटफट हेडियो अध वच्चे के पेट्रोल नथी आए मुआ ते वड़ी आ डखो करयो एम करी ने यामा ओळी लाओ तो कई पेट्रोल पुराई जवानो नथी ए तो यूज रेवानो अरे के चलो भैया आनी भूलते ही नथी ए बराबर तो ना थयो तो एने टोंकी खाली राखी एना थी हमें अमारा आनंद नी टोंकी खाली नहीं थवा दे ए आपड़ा हाथ नी बात छे। जय जय। तो मान अपमान तुल्य लाभ अलाभ में तुल्य विघ्न और सफलताओं में तुल्य तो ये समत्व योग की प्राप्ति हो जाएगी। 25 वर्ष के नंगे पैर, 40 वर्ष के उपवास, 30 वर्ष की तीर्थ यात्रा और 35 वर्ष के खाली जल पीकर पारणा किए, इन सब तपस्याओं को तराजू के एक पलड़े में डाल दो और समता की एक क्षण को डाल दो तो समता की तपस्या बढ़ जाएगी, वो छोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, समता से चित्त में विश्रांति मिलेगी और चित्त में विश्रांति मिलने से सामर्थ्य का प्रागट्य होगा और समर्थ को नहीं दोष गोसाई। श्री राम। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। देशी भाषा में आपने सुना होगा कि दुबड़ो कहे ते जाए अने धोल तमाचा खाए। दुर्बल मन दुर्बल आदमी, समाज में जो दुर्बल आदमी है वो कोई मीटिंग में या कोई सभा में कोई बात भी कहेंगे ना तो लोग उसकी मजाक उड़ा देंगे। दुबड़ो कहे ते जाए करे ते जाए ने धोल तमाचा खाए, सबड़ो कहे ते थाए अने ढोल नगारा वाग, ऐसी कुछ कहावत। तो दुर्बल होने का एक तरीका है और सबल होने का दूसरा तरीका है। देह को मैं मानना, इंद्रियों के द्वारा दिखने वाले जगत को सच्चा मानना और उसमें सुखी होने की कोशिश करना, ये समझो दुर्बल होने का रास्ता है। देह को और इंद्रियों को प्रकृति की चीज मानना और संसार को स्वप्न मानना और उसको देखने वाला आत्मा चैतन्य साक्षी सत्य है वो अपने को मानना, ये सबल होने का तरीका। भागवत में उद्धव पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि ये जीव वास्तव में इसका स्वरूप परमात्मा है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में और 14वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किए हैं कि गुणातीत के क्या लक्षण हैं, स्थिति प्रज्ञ की क्या भाषा है, जो समाहित है, जो समाधिस्थ है, वो कैसे खाता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, इसका आचरण कैसे होता है। यही बात गुरु गोविंद सिंह के शिष्यों ने गुरु जी से पूछी कि गुरु जी आप बोलते ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा होता है, ब्रह्मज्ञानी अनाथों का नाथ होता है, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ होता है, ब्रह्मज्ञानी सद सदा जागत, ब्रह्मज्ञानी अहम बुद्धि त्यागत, आप ब्रह्मज्ञानी की प्रशंसा करते सम अघाते नहीं, तो ऐसा ब्रह्मज्ञानी गुरुजी कैसा होता है, उसको पैर कितने होते हैं? गुरुजी ने कहा दो पैर होते हैं, बोले हाथ भी दो होते हैं, हाथ भी दो, आंखें भी क्या, आंखें भी दो। तो गुरुजी वो पृथ्वी पे रहता है कि आकाश में? बोले पृथ्वी पे रहता है। तो गुरुजी आपने ऐसे ब्रह्मज्ञानी को कभी देखा है? अब गुरुजी क्या बोले कि मैं ही हूं, ऐसा तो ना बोले, बोले मैंने तो देखा है। तो गुरुजी हमको कब देखेगा कि तुम जरा सत्संग सुनते सुनते जरा बुद्धि का विकास होगा ना, तब तुमको दिख जाएगा। जय जय श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहा है कि स्थिति प्रज्ञ कैसा होता है, पता नहीं कि तेरा बाप सामने खड़ा है बागडोर लेके रथ चलाने का मौका आया तो रथ चला रहे हैं, और संधि का दूत होने का मौका आया तो संधि के दूत होने को जा रहे हैं, और युद्ध की तैयारी का मौका आया तो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और पांचजन्य शंख बजाने का मौका आया तो बजा रहे हैं, और चक्र उठाने का मौका आया तो उठा रहे हैं, और तुझे डांटने का मौका आया तो डांट रहे हैं, पुचकारने का मौका आया तो पुचकार रहे हैं, लेकिन भीतर से वैसे के वैसे तेरे काका सामने तक खड़े। अर्जुन पूछ रहा है कि स्थिति प्रज्ञ कैसा होता है। जय जय श्री राम। स्थिति प्रज्ञ शका भाषा समाधिस्थ केशव। केशव ने क्या जवाब दिया? प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन से सारी की सारी कामनाएं जब विदाय हो जाती, वो पूर्ण निष्काम तो ब्रह्मवेता होता है। अपन लोगों को निष्कामता का अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास परिपक्व होता है तो ब्रह्म ज्ञान प्रकट होने में सहाय होता है। खैर, गीता के 14वें अध्याय में और दूसरे अध्याय में स्थिति प्रज्ञ के लक्षण पूछे गए। ये 14वें अध्याय का 25वां श्लोक है कि मान अपमान में तुल्य हो और मित्र और अरि पक्ष में तुल्य, अरि माना शत्रु के पक्ष में। फिर क्या? सर्व आरंभ परित्यागी। आपको बोध हो गया या ज्ञानवान को बोध हो गया तो उसके चित्त में आरंभ नहीं होते हैं। जैसे अज्ञानी आदमी आरंभ करता है कि ये करूंगा फिर ये मिलेगा फिर ये करूंगा, तो सुख लेने के लिए उसके मगज में प्लान दौड़ते रहते हैं। ज्ञानी के हृदय में सुखी होने के लिए या सुख पाने के लिए या सुख के लिए कोई प्लान नहीं बनते। जैसे निर्दोष बच्चा सुख स्वभाव होता है, उसका ये प्लान नहीं होता कि मैं दूध पीऊंगा इतने बजे दौड़ दौड़ के घूमने जाऊंगा, फिर थकूंगा तो खेल खत्म, बैजा जम करके माँ की गोद में जंप मारूंगा, और फिर मम्मी नाक का टेवा पकड़ के गागू जुगलू करेगी, और मैं हंसूंगा और मम्मी छाती से लगा देगी, और फिर भाव में आकर स्तनों से दूध बहेगा और मैं पीऊंगा, मेरे को बड़ा आनंद आएगा। ऐसा प्लान थोड़ा होता है बच्चे का। श्री राम। और सच पूछो कि जो प्लान बना के सुखी होने की कोशिश करते हैं उनकी अपेक्षा वो ज्यादा सुखी होता है बच्चा? उसके चित्त में कोई आरंभ थोड़े होता है, होता है? अगर अपना आरंभ होता है कि मैं फलाना हूं, हाँ महाराज यहां तो कितना आया वैसे भेज रहे नहीं मोड़ा। जय जय। अपने सुख की आप इच्छा नहीं करते तो प्रकृति सामने वाले को बाध्य कर देती है, ऐसी घटना पैदा कर देगी कि आपके अनुकूल प्रकृति का वातावरण हो जाए। लेकिन अनुकूल हो जाए इस भाव से ब्रह्मवेता इच्छा नहीं करता कि प्रकृति अनुकूल हो इसलिए ऐसा करूं वैसा करूं, नहीं, आप अपने आप में इतने तृप्त रहते हैं कि बाहर की अनुकूलता का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता और बाहर की प्रतिकूलता का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपने जगत जीत लिया महाराज। ऐसे ही उस बुढ़िया ने जगत जीता। श्री राम। बुढ़िया कथा में सुन के आई थी कि सब में मेरे हरि हैं, अनेक रूप में एक अरूपी परमात्मा है। अब बुढ़िया का चित्त प्रसन्न रहने लगा। अनपढ़ बुढ़िया थी लेकिन बड़े बड़े पढ़े हुए भी उस बुढ़िया के सत्संग से, बुढ़िया के समागम से, सानिध्य से, बुढ़िया के श्री चरणों में बैठने से पढ़े लिखों को भी कुछ समझने को मिल जाता, उसकी थोड़ी कीर्ति फैल गई। राज कीर्ति फैलती है ना, तो फिर परीक्षा के दिन भी आ जाते हैं। कसौटी से सबको उतरना पड़ता है, चाहे ढोंग से कीर्ति फैली हो तभी भी कसौटी होगी, और सच्चाई से कीर्ति फैली है तभी भी कसौटी होगी। श्री राम। लोहे की भी कसौटी होती है अपनी जगह पर, और सोने की भी होती है, कसौटी होती है। कसौटी के लिए लोग तो आए, और जिनका भाव अच्छा था वे धन्य धन्य करके विदा हुए, जिनका कुभाव था कि आ तो ऐसे ही वैसे करके अशांत होके गए। डोसी में तो कोई गुण था नहीं, लोग उसमें गुण का आरोप करके अपना भाग्य बना लेते थे और दोष का आरोप करके अपना दुर्भाग्य बना लेते थे। ज्ञानी तो गुणातीत होता है, ज्ञानी तीनों गुणों से परे होता है। तो उस बुढ़िया में तो कोई गुण था नहीं, लेकिन बुढ़िया के शरीर में और बुढ़िया की बुद्धि में और बुढ़िया के व्यवहार में किसी को गुण दिखता था और धन्यवाद पैदा करके वो अपना भाग्य बना लेता था, और किसी को दोष दिखता था तो फटकार पैदा करके अपना दुर्भाग्य बना लेता था। दोषी तो दोषी थी। जय जय महाराज। ऐसे करते करते एक दिन सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता का मन हुआ कि चलो उस बुढ़िया का परीक्षण किया जाए। महाराज ब्रह्मा जी बने, सिपाही विष्णु बने, रुद्र बने सर्प, विष्णु बने सिपाही और ब्रह्मा जी बने पंडित। तीनों देव तीन रूप धारण करके बुढ़िया के घर में आ पहुंचे। लकड़, पुराने जमाने में लकड़ों का ढेर रखते थे प्रांगण में। लकड़ के ढेर से एक सांप निकला जो रुद्र बने थे। उस सांप ने बुढ़िया का एक जवान बेटा था उसको लपेट झपट लिया। कारमी चीज पाड़ी ने वेलो जवान हाय माड़ी रे करके मर गया। नाड़ी बंद हो गई, जहर का असर तुरंत शरीर में व्याप्त हो गया। बुढ़िया ने देखा लेकिन चित्त में शोभ नहीं हुआ। इतने में सिपाही प्रकट हो गए। सिपाही आया कि आवाज किसका आया, आवाज किसका आया, माड़ी रे किसने कहा? बोले वो तो मेरे बेटे को जरा सांप ने काटा ना, उसलिए। तो क्यों माई, ये तो मर गया? हाँ। बोले मर गया तो उसका आयुष्य पूरा हुआ होगा। बोले ये इसी सांप ने काटा है? बोले हाँ। बोले ठहरो इसको तो पहले ठीक करूं, भाग जाएगा। बोले नहीं नहीं भैया, ठहर ठहर ठहर, इसको मारने से मेरा बेटा जिंदा तो नहीं होगा और प्रारब्ध वेग पूरा हुआ होगा। उमा दारू योषित की नाही सबई करावत, राम गोसाई सब भगवान करते हैं, फिर मैं नाहक नया कर्म का बंधन क्यों मानूं? मेरे बेटे का इसी निमित्त प्रारब्ध पूरा हुआ होगा, मृत्यु हुआ होगा, नहीं तो इतने दिन तक लकड़ियां तो थी, बेटा तो निकालता था, यहीं हम रहते थे, कभी आया नहीं, और आया ओचिंता आके काटा है तो इसका कुछ घड़ी पूरी हुई होगी, अब इसको मरवा के मैं अपना नया कर्म क्यों बनाऊं? जाने दे जाने दे। इतने में वो ब्रह्मा जी आए पंडितों के, नारायण नारायण, अरे मैं तो भिक्षा लेने आया, क्या है माई क्या हो गया? बोले सांप ने जरा बेटे को काट दिया। सिपाही बोलता कि बुढ़िया बोलती इसको मत मारो, पंडित बोलता है शठम प्रति साक्षात, जैसे को तैसा और ब्राह्मण को नाई, आतताई को सजा देना चाहिए। माई ने कहा कि मैं तो भाई पंडित नहीं हूं, ये आतताई है और ये नहीं है, मैं तो सब में भगवान देखने का भाव करती हूं, आतताई को सजा देना न सजा देना ये यमराज का काम है, मैं यमराज नहीं हूं। देवो ने देखा क्या, हा हा माई में कितनी समता, एक का एक बेटा जवान सर्प ने काटा है और माई के चित्त में विक्षेप नहीं हो रहा है। वो तीनों देव सर्प सिपाही और पंडित अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गए। तो ये कहानी हमें ये समझाती है कि समता में बड़ी शक्ति है। ऐसे तो हम कई देवों की आराधना करते और वो देव मिलते नहीं, आप समता में ठहर जाओ तो वो देव को आप न भी बुलाओगे तो कभी कभी आपके पास आ जाएंगे। श्री राम। तो जरूरी नहीं कि वे साकार रूप में आ जाए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये तीन गुणों के तीन अधिष्ठाता देव हैं, और वो तुम्हारे अंतःकरण में बैठे ही हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को समझने की समता भी शक्ति भी समता से आती है। तो यहां भगवान बोलते हैं मान अपमानयो तुल्य तुल्यो मित्र अरिपक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीतस उच्यते। बड़े बड़े आरंभ मैं ये करूंगा अन्यार्ट मानडड़ी आया नेठमा वडड़ी थी नस मैट मुझे मंगनों कराइंदा मैं फिर शादी करूंगी फिर लड़के होंगे फिर बहू आएगी फिर पैर चंपी करेगी और मैं कहूंगी पानी लाओ और मेरी अच्छी अच्छी बहू खीर का कटोरा लाएगी तब कितना सुख होगा। वो माई तो दुखी रहेगी शरीरा। जो किसी के आधीन सुख की इच्छा करता है बहू आएगी तब सुख होगा बेटा होगा तब सुख होगा शादी होगी तब सुख होगा दुकान होगा तब सुख होगा ये ड्रेस सिल जाएगी तब सुख होगा डिजाइन वाला जब्बा पहनूंगा तब सुख होगा ये सलवार पहनूंगा तब सुख होगा ये कुर्ता पहनूंगी तब सुख होगा ये बुशर्ट पहनूंगा तब सुख होगा। समझ लेना कि वो सुख को जानता ही नहीं वो दुखी होने का सामान इकट्ठा कर रहा है वो परेशानी का सामान तैयार कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। श्री राम। और समाज का बड़े में बड़ा ये दोष हो गया आजकल हम कुछ करके कुछ पाकर कोई परिस्थितियों की आकांक्षा करके सुखी होना चाहते और ऐसी परिस्थिति नहीं तब चाहते कि ऐसा हो जाए तब सुख और जैसे ऐसा होने पर लगता कि कुछ नहीं और कुछ हो जाए तो और कुछ और कुछ और कुछ में जीवन पूरा हो जाता है। वासना तो पूरी नहीं होती है उम्र पूरी हो जाती है वासना तो पूरी नहीं होती है शक्ति पूरी हो जाती है। और वो आदमी की कितनी दयाजनक स्थिति है कि जिसके पास वासना रह गई और भोगने की शक्ति चली गई देखने की वासना है और देखने की शक्ति क्षीण हो गई काम विकार भोगने की वासना है लेकिन इंद्रियां शिथिल हो गई सुनने की वासना है लेकिन कान बहरे हो गए सूंघने की वासना है लेकिन नाक की इंद्रियां सूख गई कितना दुख होगा। तो वासना के अनुकूल भोग भोगने से वासना के अनुकूल आरंभ करने से जो कुछ मिलता भी है श्री राम तो वो टिकता नहीं वो भोग आकर चला जाता है और उस भोग से अगर सुख भी मिला तो सुख की वासना और मजबूत हो जाती भोग नहीं रहता लेकिन वासना रह जाती। तो सारा जिंदगी जिस प्रकार के भोग भोगे जिस प्रकार की अनुकूलता चाहिए और अनुकूलताओं से सुख मिला तो सुख की उसी अनुकूलता की वासना रहेगी अनुकूलता रहेगी नहीं या तो पत्नी चली जाएगी या तो पति चला जाएगा या तो पुत्र चला जाएगा या तो पिता चला जाएगा या तो धन सेठ को छोड़ देगा नहीं तो सेठ धन को छोड़ के जाएगा या तो सत्ता अपने को छोड़ देगी या तो सत्ता को अपन छोड़ के चल जाएंगे। श्री राम ऐसा कोई आरंभिक सुख ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई दुख ना हो वियोग ना हो। इसलिए जो बुद्धिमान है वो अन आरंभ होता है ये महान त्यागी होते। किसी ने घर का त्याग किया किसी ने स्त्री का त्याग किया किसी ने रुपए का त्याग किया किसी ने सत्ता का त्याग किया किसी ने नमक का त्याग किया किसी ने चाय का त्याग किया किसी ने मिर्ची का त्याग किया किसी ने तेल खाने का त्याग किया तो किसी ने घी खाने का त्याग किया। ये सब तुच्छ तुच्छ त्याग है लेकिन तीनों गुणों का जिसने त्याग कर दिया उससे बड़ा और दुनिया में कोई नहीं। ओम ओम ओम। लेकिन उसको ये पता नहीं कि मैं दुनिया में बड़ा हूं। अगर बड़प्पन अपने में थोपेगा तो किसी गुण को लेकर थोपेगा। आज का श्लोक बड़ा कीमती श्लोक है ये अगर इसका कुछ ऐसा समझ में आ जाए ना और जीवन में उतरे महाराज तपी की तपस्या सिद्ध हो गई जपी का जप सफल हो गया त्यागी का त्याग सफल हो गया योगी का योग सफल हो गया ज्ञानी का ज्ञान सिद्ध हो गया भक्त की भक्ति सफल हो गई कर्मी के कर्म सब सफल हो गए ये श्लोक खाली समझ में आ जाए। अभी तो खाली सुना है समझ में तब आया जब युधिष्ठिर के नाई अक्रोध सत्य बोलो और अक्रोध रहो सबने आकर दूसरे दिन सुना दिया गुरु ने। युधिष्ठिर ने कहा मेरा तो पक्का नहीं हुआ बोले दो जरा से सूत्र नहीं पक्के हुए गुरु ने पिटाई के खूब पीटा तो वो युधिष्ठिर बोलते गुरु जी एक सूत्र तो याद रह गया। बोले इतना पीटने पर याद हुआ पहले नहीं याद आया कि क्रोध के मौके पर मौका आया नहीं तो अक्रोध कैसे याद रहे। आपने खूब पीटा और फिर भी क्रोध नहीं आया, फरियाद नहीं हुई, तब समझा कि ये सूत्र मेरे को याद आया। इस तरीके से ये समझ में आ जाए, एक श्लोक काफी है। तो जो आदमी जगत को सच्चा मानकर देह को मैं मानता है, वो भगवान का घोर अपमान करता है। श्री राम। देह को मैं मानता है, ए उद्धव, जो देह को मैं मानता है और जगत को सच्चा मानता है। गीता में नहीं कहा जगत स्वप्न जैसा, लेकिन भागवत के 11वें स्कंद में कहा है ये स्वप्न तुल्य संसार में। यदि दम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम। जो मन से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से जो कुछ समझ में पकड़ में आता है, ये सब माया मात्र है। माया का मतलब है मां मन जो या मन दिखे, जो है नहीं और दिखती है उसको बोलते माया। जैसे मदारी की माया होती है, जादूगर की माया होती है, ऐसे ये है तो माया, लेकिन हम गुणों में ऐसे उलझ गए कि इसको तो मानते सत्य। आगे और पीछे जो झूला जाता है ना, उसको तो मानते मजा आती है, लेकिन वो सेंटर में भी आता है और सेंटर के कारण ही आगे पीछे जा सकता है। ये बात तो सीधी है, झूला तो जाएगा आगे और फिर जाएगा पीछे, क्या झूला पे झूले। और जब झूला मूल स्थिति में होता है तो झूलते झूला है कि झूला नहीं है, झूला नहीं तो झूला है मूल स्थिति में, आगे और पीछे ये विकार है उसके। श्री राम। ऐसे हर्ष और शोक ये मन के विकार है, अब मूल दशा ये मन का मूल स्वरूप है। श्री राम। तो हम क्या करते हैं कि मान अपमान में आगे पीछे जाते हैं, मान मिलता है तो आगे गए, अपमान हुए तो पीछे हटे। चार आदमियों ने वाह वाही करे कि हम आगे आ गए, अब पांच आदमी ने निंदा की तो हम पीछे हट गए, लेकिन हम बीच में थे तभी तो आगे आए और पीछे हटे। श्री राम। ये बात अगर समझ में आ जाए, तुम्हारे पास धन ज्यादा होने से सुख होगा ऐसी बात नहीं है, धन कम होने से सुख होगा ऐसी बात नहीं, सत्ता और सौंदर्य बढ़ने से सुख होगा ऐसी बात नहीं, और इनके घटने से सुख होगा ऐसी बात नहीं। तुम्हारे पास इस वक्त जितना है जो है वो सुखी होने के लिए काफी है। तुम्हारे पास क्या है कि साईं हमारे पास तो चार कमरे हैं फलाना, ना ना, तुम्हारे पास अभी पूरे का पूरा ब्रह्म है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम्हारे पास अभी ऐसा है पूरे का पूरा, लेकिन जो पूरे का पूरा है वो भाता नहीं, अधूरा तुम्हारे हाथ में आता नहीं। श्री राम। पूरा भाता नहीं और अधूरा आता नहीं। अब क्या किया है? ओम 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 ओम, 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 ओम।